रमज़ान में कुछ काम, ये सिर्फ दोहराइए मेरे आपके लिए, रमज़ान में क्या करें? एक तो रोज़ा रखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, इफ्तारी करेंगे, सहरी बनाएंगे, वो है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे रिश्तों के बिगाड़ में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, और वो क्या है? फजूल बातों से परहेज। चुप कर रोज़ा रख लें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब नन्हे से ईसा को लेकर जा रही थी तो बड़ी परेशान थी कि अल्लाह, ये छोटा सा बच्चा लेके जा रही हूँ तो बिरादरी के लोग क्या कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया? तो अल्लाह ने एक तरीका उसका बताया था, कहना इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा। और सौम कहते ही चुपके रोज़े को है, सियाम आम रोज़े का नाम है, कम बोलना। ये एक महीना आपकी मेरी ट्रेनिंग है, कम बोले, थोड़ा बोले, अच्छा बोले, मीठे बोल, कड़वी बातें नहीं करनी, बद कलामी, फुहश गोई, फजूल बातें अब मेरी डिक्शनरी में नहीं रहेंगी। सिर्फ इस एक बात के बाद में सुभानक अल्लाहुम्मा कह दो ना, तो आपके आधे से ज़्यादा रिश्ते जुड़ जाएंगे। बड़ा प्यारा कमेंट आया किसी का फ्लायर के ऊपर, उन्होंने कहा आपके फ्लायर को देखकर तो लग रहा है ये शादी.com है, यहाँ पर रिश्ते, और आप भी कहीं रिश्ते तो नहीं करवाने आए बच्चों के, किसी को गलती तो नहीं लगी है? यकीन करें, हमारे रिश्ते नए रिश्ते बने या जो अल्लाह ने दे दिए वो बने हुए हैं, उसके बिगाड़ में ये जुबान बड़ी अहम है। चलिए, अब मुझे पता है कोई तो इस वक्त आपका दिल कर रहा है कि हमारे हस्बैंड सुन रहे होते हैं, ये वो ही बोलते हैं ज़्यादा, गुस्सा तो वो करते हैं, गलत लफ्ज़ भी उनसे ही निकल जाते, मैं बेचारी तो बोलती नहीं हूँ। देखिए, इस्तफ्ते कलबक, अपने दिल से पूछिए, वो जो भी बोले मैं तो नहीं बोलती, अपनी ज़ुबान पे काबू रखना है इंशाअल्लाह ताला। फिर एक और काम, जिक्र अस्कार और दुआ का अहतमाम करना है कसरत से। बेजा दावतों से परहेज़ करें। बड़े बड़े होटलों में दावतें, इफ्तारियों में बड़े बड़े यानी प्रोग्राम, नाउज़ु बिल्ला, और उसमें कई गलत चीज़ें खिलाएं आप लोगों को, लेकिन शो ऑफ के लिए नहीं खिलाना, दिखावे के लिए नहीं खिलाना, अल्लाह के लिए खिलाना है इंशाअल्लाह। फिर इसी तरह इस रमज़ान में अपने गुनाहों और बुराइयों को छोड़ना है, बहुत सारी कोशिश करनी है, कुरान को समझ कर पढ़ना है और गौर करना है। चलिए, एक मुश्किल चीज़ जो आपको भी दूंगी, नाराज़ रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों से सुलह की कोशिश करनी है। पर्सनल सी बात पूछूं, आप में से कोई जो सिस्टर्स ये कह सकती हैं कि मैं ना किसी से आज नाराज़ हूँ और ना कोई मुझसे नाराज़ है, वो हाथ खड़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो बाकी सिस्टर्स हैं, आज से एक काम कीजिए, तकरीबन हमारे पास बीच में 4 या 5 दिन हैं, रूठे हुओं को बना लें, घर चले जाएंगे ना, आधी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। जब लड़ाई होती है और हम उसमें इधर उधर हो जाते हैं ना, खराबी है। अगर कोई बेटी बहन रूठ के आई हुई है ना, छोड़ आइए, आज बात कर लें, ऐसी ना छोड़ें, वजह ढूंढें, वजह क्या है, थोड़ी सी निगोसिएशन के बाद मियाँ बीवी को साथ कर दें। आधे से ज़्यादा घर टूटने से बच जाएं, अगर बीच में कोई तीसरा ना पड़े, खुद ही लड़ो, खुद ही मरो, खुद ही ठीक हो जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक चुप कर जाए, एक सुन ले, एक बोल ले, एक बुला ले, जहां बीच में आपकी मेरी मुदाखलत आती है घर टूटता है। रूठों को मनाइए, क्या करने लेकर? मैं बहुत ही कड़वी सी एक्टिविटी आपको देने लगी हूं अपने थीम से मुतल्लिक। देखिए, द वर्स्ट इंग्लिश में और उर्दू में क्या, बुरे से बुरा, जो बहुत तकलीफ दे हो किसी के लिए सोचने का, वो सोचवाने लगी हूं। जिससे आप नाराज हैं, तसव्वुर की निगाह से देखिए और कानों को सुनाइए, फोन की बेल बजी और आपके उस भाई या बहन जिससे आप नाराज थी उसकी मौत की खबर आई, और अचानक मौत। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमें एक दूसरे से माफिया मांगने का भी मौका ना मिले। तसव्वुर से सोचिए, अगर मेरे भाई बहन रिश्तेदार अपना जो भी है बेगाना, अगर उसकी अचानक मौत आ जाए और मैं उससे माफ़ी ना मांग सकूं, वो ना मांग सके, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? क्या आपने नहीं देखा वो जनाजे जहाँ सब बैठे होते हैं, फूड़ी डली होती है और दूर से बहन रोती भी आती है, हाय मेरा भाई चला गया, मैंने तो 5 साल से तेरी शक्ल भी ना देखी। कितने लोग हैं हमारे कल्चर में जो मैयतों पे आते हैं, फिर क्या फायदा? अगला तो सारी जिंदगी आपका रास्ता देखता गया, आज बना लें, छोड़िए, मिट्टी डालो, दूसरा आज भी सोच लेते हैं। आप कहते नहीं अभी नहीं माफ करना, अभी मेरा दिल नहीं ठंडा होगा। जैसे बहुत सारे लोग ये काउंसलिंग करते हैं, कहने लगी कि सबको माफ कर दूंगी, उसको नहीं करूंगी। कोई किसी का भी अपना नाम ले रही थी। मैंने कहा फिर आपकी असल बीमारी भी यही है, जब तक आपने उसको नहीं माफ करना आपको चैन कोई नहीं आना। कि आपकी शुगर उसी के नतीजा, आप जलती रहती हैं, कुड़ती रहती हैं, उसको माफ करें। एक सिस्टर ने खड़े होकर कहा मैं उसको माफ कर दूं जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई। मैंने कहा जी उसको भी माफ कर दें। क्यों? अगर आप अचानक मर जाएं, कितनों के गिले गुस्से दिल में रख के मरेंगे आप? नहीं, माफ कीजिए। एक काम करना पड़ेगा, बहुत आसान है लेकिन सबसे मुश्किल बन जाता है जब, और वो है अपनी अना के ऊपर पांव रख दे। हम कहते हैं लोगों के कहा हाँ झूठी थी ना, आ गई। हाँ भी झूठी थी, आप समझ आइए तुम्हें ना, हाँ आ गई है भाई, कर लो जो करना। क्या कहोगे? मैंने अपने अल्लाह के लिए करना है। देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके मेरे लिए रोल मॉडल है। बेटी के ऊपर इल्जाम लग जाए ये कोई छोटी बात नहीं होती, और वो बच्चा जिसको कुछ दे दिलाकर पाल भी रहे थे मस्तों, हजरत अबू बकर का रिश्तेदार गरीब, अबू बकर सिद्दीक उसकी किफालत करते थे, बदर के सहाबी भी थे और बहुत कुछ था उन पर। जब पता चला कि मेरी बेटी पर बात करने वालों में ये भी शख्स आगे आगे, बशर होने के नाते, बाप होने के नाते अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा ली कि मैं आज के बाद इसको कुछ नहीं दूंगा। देखिए आम तौर पे तो ये बात ठीक थी लेकिन मुकामे सिद्दीकियत के खिलाफ थी। अल्लाह ने आयतें उतार दी, अल्लाह तो हे बोना, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि यग़फिरुल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? वहां से अबू बकर बोले क्यों नहीं अल्लाह, हम चाहते हैं कि तुम्हें माफ कर दे। वापस उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया, जो देते थे उससे ज्यादा देना शुरू कर दिया। तो क्या अल्लाह न करे अबू बकर की बेटी की तरह हमारी बेटियों पे किसी ने ये इल्जाम तो नहीं लगाया? यानी अबू बकर को सोच लीजिएगा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को, एक नबी और एक सिद्दीक। कभी भी किसी रिश्तेदार पे, दोस्त पे, साथी पे गुस्सा आए तो सोचे इसने मुझे पकड़कर कुएं में तो नहीं फेंका, कुएं में तो नहीं किसी ने धक्का दिया, कत्ल की कोशिश तो नहीं की ना, झूठ मूठ का मेरा खून तो लगा कर नहीं ले गए मेरे बाप के पास, मेरे बाप को रुलाया तो नहीं 40 साल इन्होंने, मेरे बाप की आंखें तो नहीं सफेद हो गई इसके गम में। तो मुझे किसी ने कुछ कह भी दिया तो कह दे, इसको और भी कहना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक बहुत प्यारी बात मिलती है, आप सब आज इसको अपने लिए नोट करेंगे। आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि आप अपनी ज़ात के लिए कितना संजीदा हैं और दूसरों के लिए। सेल्फ कॉन्शियस लोग कभी दूसरों की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आकर कहता है कि अबू हुरैरा आपको पता है वहाँ एक शख्स बैठा आपकी बुराइयाँ कर रहा था, आप पहले तो अपने ऊपर लीजिए, अल्लाह ना करे कोई हमें आकर के वो बाहर बैठा कोई आपकी बुराई कर रहा है, हम कहेंगे इधर आओ, उसने तो एक किया मैं तुम्हें उसकी 10 सुनाऊं, ऐसे ही होता है ना? नहीं, कहने लगे अबू हुरैरा की बुराई करता है, मुझे हर वक्त 3 बातों का गम है, हर वक्त 3 बातों का गम है मुझे। नंबर 1, आज तो अच्छे काम कर रहा हूँ, नबी का हदीस, इल्म, दोस्त, बहुत खूबियाँ थी, आज अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं पता कि जिस दिन मौत आएगी उस दिन क्या कर रहा हूँ, यानी मेरा खात्मा बिल खैर होगा या खात्मा बिल सू होगा। दूसरा मेरा गम क्या है कि जब कल नामे अमाल तुलेंगे तो मेरे दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं में, यानी असहाबुल यमीन या असहाबुल शिमाल, ये गम है मुझे। और तीसरा गम ये है कि जब पुल सरात से गुजरेंगे तो मैं ठीक तरीके से गुजर जाऊंगा या कट के जहन्नुम में गिरूंगा। पहले तो यहाँ अगर मैं रुक जाऊं और आप और मैं सब सोचें कितने मुख्तलिफ गम हैं हमारे अबू हुरैरा से, हमें तो शायद ही कभी इस चीज़ का गम आया हो, कभी कम ही सोचा होगा, हम तो कुछ और ही सोचे बैठे होते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं ये असल बात है जो आपके मेरे काम आएगी, کہتے ہیں کہ اگر میں ان تین مقامات سے خیر سے گزر گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں کہ مجھے برا کہیں، آئی ڈونٹ کیئر، جس کو آپ کہہ لیں، جو بھی ہے تو ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی ایک جگہ پہ بھی روک لیا گیا تو دنیا کے ہر انسان کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کیا کہ وہ ابو ہریرہ کی برائی کریں، کہ کتنا برا تھا، دیکھو موت کے وقت کتنا برا انجام ہوا اس کا، اور دیکھو نامۂ اعمال کہاں ملا اور بول سرات پہ اٹک گیا. تو بس بات سمجھ آ گئی ہمیں، لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جائیں، یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اگلا نقطہ بہت ہی مشکل ہے، اور خاص طور پہ بھائیوں کے لیے، ہمارے پیارے بھائی جو دن رات محنت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا پیٹ پالنے کے لیے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی آمیزش حرام کی ہو جاتی ہے. نیت کیجئے اس سال کے رمضان میں، یہ ٹریننگ ہے، پھر انشاءاللہ سارا سال ہی ہوگی، میں نے حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالنا، پاکیزہ اور حلال طریقے سے رزق کمانا ہے اور کھانا ہے. آپ کہتے ہیں ہم کیسے کریں، چیک کیجئے، آپ کو کوئی بھی کھانا دے آپ پکڑ کے تو نہیں کھاتے، اس میں مکھی گری تھی، مچھر تھا، کیا تھا، نہیں. بالکل اسی طرح سے عورتوں کا فرض بنتا ہے، شوہر کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. باپ بیٹی کا معاملہ ہے، بھائی بہن کا ہے، بیٹا کماتا ہے، ذرا چیک تو کیجئے ہے کیا. جیسے میری بات ہو رہی تھی کسی کے بارے میں تو مجھے بتایا انہوں نے کہ کسی جگہ اکاؤنٹنٹ تھے تو جاب چھوڑ دی. میں ایک دم سوچ میں پڑی کہ بھلا کیوں چھوڑی ہوگی، اور وہ اس لیے چھوڑی کہ جو فارم تھی وہ ان کو مجبور کرتی تھی کہ دو انوائسز بناؤ، ایک وہ جو ٹیکس والوں کو دکھانی ہے، ایک وہ جو نہیں دکھانی. جن کو سمجھ آئی یہ بات ان کو آ گئی ہے، جن کو نہیں آئی نہیں آئی. یہ ہوتا ہے تقوی، تقوی آپ کا چوکی دار ہے، یہاں بیٹھتا ہے، ہر بات میں آپ تول رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ رزق حلال ملے، اور انشاءاللہ پھر صدقہ اور خیرات کثرت سے کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ اور میں اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالی ہمارے خاک میں بہتر کرے گا. رمضان مبارک کی کچھ خوبیاں احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے 3277 اور مسلم 1079. کیا پتہ چلا کہ ابھی چند دن میں جب رمضان شروع ہوگا تو اس وقت آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے. اب آپ کو مجھے تو نہیں دکھ رہے اس وقت کھلے ہوئے، تو یہ غیب کا پردہ ہے. دروازے کا کھلنا کیا ہے؟ اصل میں خیر کا کھلنا، اور اللہ نوز دی بیسٹ اس سے کیا مراد ہے. لیکن جو بات ہمارے آپ کے لیے بڑی اہم ہے وہ کیا ہے کہ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. تو ایک سوال ہے پھر، جب شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے تو پھر گناہ کیوں ہوں گے؟ ہمارا اپنا نفس، شاباش، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. تو کیا پتہ چلا کہ صرف شیطان ہی ہم سے غلط کام نہیں کرواتا، بلکہ ہم سے غلط کام کروانے میں ہمارے اپنے نفس کا بڑا حصہ ہے. ہم نے ریسنٹلی ایک سیمینار کیا مینچسٹر سے، اینیمی ود ان، آپ کو موقع نہیں مل سکا ہوگا، اپنی لسٹ میں کہیں بھی لکھ لیجئے. یہاں آج ہی ایک چھوٹا سا سائٹ پہ ریمائنڈر باکس بنائیے. بہت ساری چیزیں عادتاً اس سوچ کے ساتھ کہ شیئرنگ از کیئرنگ، شاید کبھی کسی کو فائدہ ہو، بولتی رہا کروں گی. آپ اپنی نوٹس جہاں لے رہے ہیں اس کی بیک پہ لکھتے جائیے تھنگس ٹو ڈو، جب کبھی موقع ملے، رمضان کے بعد، عید کے بعد، اور آپ اس موضوع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں ہم نے بڑے بڑے دشمنوں میں سے ایک نفس اور ایک شیطان کو دیکھا تھا. تو کیا پتہ چلا کہ بڑے شیطان کو تو اللہ باندھ دیتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے شیاطین موجود ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں روزہ رکھنا مشکل نہیں لگتا، بعد کے 6 روزے بڑے مشکل ہیں شوال کے. رمضان کے 29-30 ہو جاتے ہیں کیونکہ شیطان کھل جاتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے نیکی کو مشکل اور گناہ کو آسان کر دیتے ہیں. پھر ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں 1896 1896, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں. قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے, ان کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا. پکارا جائے گا, روزے دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے, ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر جانے نہ پائے گا, اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر اس سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس دروازے سے داخل ہوں گے. رمضان کی کچھ فضیلتیں دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ جب کسی چیز کے فوائد بتائے جائیں تو وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. جیسے آج کل جڑی بوٹیوں کی بہت سنی گئی, اور ہر وقت ویڈیوز اور دوسری چیزوں میسیجز میں ہیلدی فوڈ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو مثال ہے کہ اب سونف کے فائدے سنیں تو دل کرتا ہے سونف ہی کھاتے رہیں, السی کے فائدے سنیں تو السی بھی کھاتے رہیں. تو انسان ہمیشہ اپنا فائدہ چاہ رہا ہوتا ہے. تو رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. آپ میں کہہ سکتے ہیں اپنی زبان کے لیے کہ نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے, بائی ون گیٹ ون فری. یہاں بائی ون گیٹ ون نہیں ہے, بائی ون گیٹ 69 فری. نفل فرض میں بدل جاتا ہے. کیا ہم سو کے گزاریں گے؟ بس آپ دیکھیے کہ آپ یہاں آئے, آپ نے کیا نیکی کی؟ آپ دیکھیے پہلے تو گھر سے تیاری کے موڈ میں رہے, گھر کا کام جلدی جلدی ختم کیا, پھر آپ نے اپنی نیند قربان کی, پھر کچھ ساتھی قریب سے چل کے آئے ہوں گے, کچھ تھوڑی دور سے گاڑیوں میں آئیں گے, کچھ کو رکشے کے پیسے دینے پڑیں گے, اور اسی طرح سے آپ سب بہت ساری قربانیاں کر کے پہنچے. ہر قربانی پہ اللہ تعالیٰ جتنا مرضی اجر آپ کو دے دے. ایک روزہ کے رکھ کے سو جائیں اور ایک یا کہ جاگ جائیں, تو ہم نے جاگنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دوسری بات دیکھیے, ماہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہوا, یہ بات تو ہم پیچھے بھی دیکھ چکے. قرآن سے گہرا تعلق, چار لفظ لکھ لیں, سننا, لکھنا, پڑھنا, سنانا. کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو سیٹ کر لیں. آپ میں سے کس کس سسٹر نے لفظی ترجمے کا کورس کیا ہوا ہے؟ کہیں سے بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے یا کر رہے ہیں؟ اور یہ بات میں اپنے سارے ساتھیوں کو کہوں گی جہاں ہمارے سبیل الجنہ کورسز چل رہے ہیں, لیکن رمضان کا ایک بریک دیا جا رہا ہے دورے قرآن کے لیے. اس وقت ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دوسرے اسٹیشنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, لندن والوں سے بھی یہی بات ہے, آسلو والوں سے بھی یہی بات ہے, اور جو دوسرے بھی ہمارے ساتھ سنیں. اس مہینے میں جتنا قرآن آپ کا ابھی تک ہو چکا ہے, کچھ کلاسز میں میرا خیال ہے 8ویں پارے پہ ہیں, کچھ پہ آن لائن آن سائٹ, آپ ہر روز کا بیلنس کر کے جیسے بھی ہے وہ پارا دہرا لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. ہمارے کلچر میں یہ بات بہت معروف ہے کہ 5 سپارے روز پڑھنے. آپ میں کتنی بہنیں ہیں جو پچھلے سالوں میں تک بھی روز کے 5 پارے پڑھ لیتی ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ 1 2 3 کچھ ہیں ابھی بھی کافی, الحمدللہ. اس سال بھی 5 ہی پارے پڑھیے, پر کیسے؟ مثلا پہلا پارا اسی کو پڑھیے خود سے, ایک دفعہ خود پڑھ لیں, پورے دن میں صفحے بانٹ لیں. 5 نمازوں کے بعد 2 2 صفحے کم و بیش, ادھر ادھر تھوڑا بہت ہو سکتا ہے 10 صفحے ہو جائیں گے. عمومی جو قرآن ہے جن کا بہت ٹیکسٹ نارمل لکھا ہوتا ہے نا, وہ 4 صفحوں سے لے کر 3.5 صفحوں تک ایک رخ ہوتا ہے. یعنی ایک پارے کو ڈیوائیڈ کر کے سارا اکٹھا نہ پڑھے اگر نہیں پڑھا جاتا, عادت نہیں ہے. یہی چیز آپ اپنے بچوں کو بھی دیں. ہم نے ایک لیکچر کیا تھا رمضان اور بچے, تو اس میں کافی ٹپس دی تھی کہ آپ رمضان سے کیسے فائدہ اٹھائیں. تو پہلا پارا ہم ایسے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی سے ذہن سازی کیجئے, آپ دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پارا پورا پڑھ لیجئے. آسان طریقہ 5 نمازیں ہیں, اور میں مانتی ہوں کہ مغرب کے بعد آپ نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ اس وقت دوسرا دسترخوان کھل چکا ہوتا ہے, روحانی نہیں ہے. تو آپ خود اپنی مرضی سے فجر کے بعد اگر آپ آدھا پارا پڑھ لیں اور باقی پاروں میں جو بھی کسرا کریں, اگر آپ کو کچھ قصہ یاد ہے تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں, نمازوں میں پڑھ لیجئے. कोई हर्ज नहीं। हमारे यहाँ दुपट्टा लेकर एक खास स्टाइल में बैठकर पारा खोल के पढ़ने को पारा पढ़ना कहते हैं, ऐसा नहीं है। बस आपका गोल है कि आपने सूरह फातिहा से लेके पारे के अंत तक आज सारे दिन में कभी भी पढ़ना है, ठीक है? वो नमाजों में पढ़ें, वो अलग से पढ़ें, जहाँ भी पढ़ लिया हो गया ख़त्म। दूसरी चीज़, उसी एक पारे की तिलावत सुनेंगे आप। इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँ, कुकिंग टाइम, कुकिंग, और घर में वो वक्त जब आप रिलैक्स हो रहे होते हैं, मतलब खाना पकाते वक्त आपको सोचना है आज क्या बनाऊं, किधर जाऊं, जहन में काम हो रहा होता है, तिलावत चला लें, जहन उधर रखें, साथ काम करते रहें, खाने में टेस्ट भी बहुत आएगा। ये भी वजीफा बन गया, दूसरा वजीफा आज का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, सुन भी लिया, पढ़ भी लिया। तीसरा, कुरान आपका दौरे कुरान है, उस 2.5 घंटे के सफर में कुरान का तर्जमा, उसकी मुख्तसर वजाहत, उसमें से अमल की बातें, ये मैं एक पारा नहीं इसको गिनती, कम से कम ये आपके 2-2.5 पारों से मुतल्लिक हो जाएगा, ठीक है? फिर अगला काम जो आप कर सकते हैं, स्टूडेंट्स, ये मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ, तर्जमा दोहरा लीजिए। आप नूरुला नूर स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, इस साल हमारा नया नूरुला नूर भी चल रहा है ऑनलाइन पे, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स, और ऑन साइट पे तो कई जगह पे चलता ही है। अपना गोल खुद बनाएं, और इसका बेस्ट टाइम वर्ड टू वर्ड पढ़ने का बेस्ट टाइम दिन नहीं है, रात है। क्यों? बोलना पड़ता है, गला खुश्क हो सकता है, जालिका ये, जालिका ये, तर्जमा बडीज बना लें। तो मुझे तरीका बताना था, बात आपको समझ आ गई है, इसको माहे कुरान बना लीजिए। नेक्स्ट थिंग क्या है कि मस्जिदों का कुरान की तिलावर से सजना, यानी इस महीने में मस्जिदों की दीवारों में से भी कुरान की आवाज़ें आती हैं, सच है कि नहीं? अपने बेटों और अपने शोहरों, भाइयों, जिनको भी आप भेज सकें, मस्जिदों में भेजें, और तरावी में पूरा कुरान सुने, और अपने लिए भी कुछ ना कुछ इसका एहतमाम करें। फिर तरावी की हलावत से रुख की तस्कीन करनी है इंशाल्लाह। और फिर एक नियत जो करना चाहे कोई कर सकता है, और वो है इतिकाफ की। ज़रा वही करेंगे जिनके लिए ये आसान हो सकेगा, और यकीन करें अब यहाँ जब आया करें, ये 2-2.5 घंटे 3 घंटे का इतिकाफ कर लिया करें, ये भी नियत है। आप उठे भी नहीं, मौका भी दिया तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं महसूस हुई, तो बस जम के बैठ जाएं इबादत की नियत से। सहील जामे की एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की हर रात में लोगों की एक कसीर तादाद को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, सहील जामे 759। ज़रा सा सोचिए, अब बिल्कुल अपने आप को रखें, हर रात में कसीर तादाद जहन्नुम से आज़ाद, वो कौन सी रात होगी जिस दिन मेरा नाम आएगा? दिल चाहता है, देखिए अल्लाह आपके नाम पे लिख दे, फरिश्तों जाओ मैंने इफ्फत को जहन्नम की आग से आज़ाद किया, आप अपने नाम के साथ बोले, सुनने में भी कितना अच्छा लगता है। और हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह मजीरना मिनन्नार, अल्लाह ताला हमें आग से बचा ले। तो रमज़ान जहन्नम की आग से खुलासी का महीना है। फिर नेक्स्ट देखिए, रोज़ा किस किस चीज़ का? नंबर एक आँख का, कैसे बदनजरी और ताक झांक से बचे। ये कब मुमकिन होगी? स्क्रीन्स बंद कर दें। पहले तो लफ्ज़ टीवी होता था ना, अब टीवी को छोड़ दीजिए, आपके बच्चों के हाथों में फोन्स भी हैं, गेम्स, बेकार याद, टाइम वेस्टर्स, तो गलत चीज़ें नहीं देखनी। फिर कानों का रोज़ा, झूठ, गीबत और गाने बजाने से बचाएं। देखिए कितना बदनसीब है वो शख्स कि उसके पास इतना कीमती महीना आए और वो बेकार याद में गुजार दे। तो इंशाल्लाह इस पूरे महीने में अगर बिलफर्ज कभी सुनते भी हैं ये चीज़ें, तो नियत कीजिए कि इसे एक महीने में नहीं सुनूंगी, फिर बात की बात में देखी जाएगी। फिर तीसरा रोज़ा है ज़ुबान का, आपका एक दिन में एक रोज़ा नहीं होता, गिनते जाएं, आँख का, कान का, ज़ुबान का। ज़ुबान का रोज़ा क्या है कि झूठ, गीबत, गालियाँ और फजूल और बेहूदा बातों से बचें, गलत चीज़ें नहीं बोलनी इंशाल्लाह, नियत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाकी बदन का, हाथों का रोज़ा क्या है कि हाथों को चोरी से रोकें, जुल्म से रोकें। पाँव का रोज़ा क्या है? पाँव से चलकर बुरी जगहों पर, गुनाह की जगहों पर ना जाएं। फिर ज़ुबान के या मुंह के रोज़े में कह के हराम ग़िज़ा का एक लुकमा भी पेट में ना जाए, और कम खाएं, साफ सुथरा खाएं, थोड़ा खाएं, और रोज़े की जो बरकत है उसको हासिल करें। और ये सब कुछ करके भी अल्लाह से डरिए, कि पता नहीं रोज़ा कबूल हुआ कि नहीं, कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से सारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए, और डर रहे कि अल्लाह तू नहीं अपनी रहमत से माफ़ करना है वरना हम माफ़ नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह इस एहसास के साथ करेंगे। फिर अगला टॉपिक है कि रोज़ा में देता क्या है, क्या मिलेगा रोज़े से। नंबर एक, गुनाह से पाक होने का बेहतरीन मौका देता है। सफाई हो जाए तो घर अच्छा लगता है, इसी तरह जब नामे अमाल की सफाई होगी तो रूह को बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसी तरह रोज़ा जन्नत के हसूल का जरिया है और आग से बचाव का जरिया है। किस किस को जन्नत चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन सबको दे दे और हम सबको एक दूसरे के साथ जन्नत में ले जाए। आग से बचाव का जरिया, अल्लाह हम सबको आग से बचा ले। फिर इसी तरह रमज़ान इबादतों के गुर सिखाने का महीना है। इतना तो हम इबादत कॉन्शियस कभी नहीं होते पूरा साल जितना रमज़ान में होते हैं। रिस्क में फराही का महीना है। जी हदीस है कि इसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। फिर इस महीने में तस्किए नफ्स होता है, और सबसे बड़ी बात के अक्सरियत तहज्जुद गुजार हो जाती है। कैसे तहज्जुद गुजार कैसे होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल कि हम लोग तहज्जुद तरावीह में पढ़ लेते हैं। वैसे तो रोज़ हर एक नहीं जागता होगा, लेकिन आम दिनों में ऐसे आ जाता है। तो अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि हमें इससे बेहतरीन फ़ायदा हो। बाकी ये है कि जो हमारा टॉपिक है इस साल का, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने इस चीज़ से आपको मुझे बहुत ही खूबसूरत तरीके से जोड़ा है कि अल्लाह ने हमें जुड़ने का हुक्म दिया है, टूटने का नहीं। तोड़ने से जोड़ना अच्छा है। रिश्ता किससे? सबसे पहला रिश्ता जो आपने मैंने इस साल जोड़ना है अल्लाह से, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है। क्योंकि जब अल्लाह से ताल्लुक की डोरियां ढीली हो जाएं, कच्ची हो जाएं या टूट जाएं, तो उसके नतीजे में इंसानों से भी ताल्लुक टूट जाते हैं। अल्लाह ताला से ताल्लुक के क्या दर्जे हैं? पहली बात के तौहीद, अल्लाह एक है, किसी दूसरे को लाना ही नहीं। दूसरी बात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और उसकी मोहब्बत दिल में आए। और तीसरा इसका तरीका है कि अल्लाह की मखलूक से भी, अल्लाह के बंदों से भी मोहब्बत की जाए। और फिर नेक्स्ट क्या है कि अल्लाह की किताब से मोहब्बत की जाए। आप सब किसकी मोहब्बत में कुरान पढ़ते हैं? अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पांचवा क्या है कि अल्लाह की नेमतों को दिलो जान से इजहार तशक्कुर कीजिए, खुश हों, शुक्र अदा करें, अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया है। जले कुटे ना रहें, रोना छोड़ दें, अब अपने आंसू पोंछ लें, बहुत रो लिया आपने, बहुत दुखी रह लिया, अब आपने खुश रहना है इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद पर कुर्बान करना, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। तो इंशाअल्लाह हम इस सफ़र में ताल्लुक बिल्ला करेंगे, जोड़ेंगे, करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट ताल्लुक किससे जोड़ना है, भला आप बताएं क्या होगा? अल्लाह से ताल्लुक के बाद किससे ताल्लुक जोड़ना है, किससे रिश्ता जोड़ना है? नबी से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम ताल्लुक कैसे जोड़ सकते हैं, इसके छह मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे सामने। नंबर एक, सुन्नतों पर अमल का एहतमाम करना, यानी सुन्नतों को हल्का नहीं जानना। फिर दूसरी बात, अल्लाह की इताअत के बाद नबी की इताअत और मोहब्बत भी दिल में लानी है। तीसरा, नबी से ताल्लुक जोड़ने का तरीका क्या है, आपकी लाई हुई शरीयत पर अमल करना है। और चौथा, अल्लाह के अहकामात पर अमल करके नबी की मोहब्बत मिलेगी। और पांचवा, बेदात से इज्तनाब, दीन में नए नए काम नहीं करने अपनी मर्जी से। और चौथा, बाप दादा का नाम लेकर वो काम नहीं करना कि जो अल्लाह ने नहीं कहा, आबा परस्ती इसको कहते हैं। आपको यकीन से मैं बताऊँ एक बात, अगर सिर्फ ये दो रिश्ते जुड़ जाएं अल्लाह और उसके रसूल से, तो हम सीधे हो जाएं। सहाबा के ये रिश्ते जुड़े हुए थे, पूरी दुनिया के फतेह बनते हुए दिखते थे, अल्लाह हमें ऐसा बना दे। अब इसके बाद किससे रिश्ता जुड़ेगा? माँ बाप से। एक दिन माँ पे बात करेंगे और एक दिन बाप पे करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप से रिश्ता कैसे जुड़ेगा? नंबर एक, वालदैन से एहसान का मामला कीजिए, वबिल वालिदैन एहसाना, वालदैन को उफ तक नहीं कहना, बुढ़ापे में माँ बाप से शफकत बरतनी है, और दुनिया से चले जाने के बाद उनके लिए दुआ भी करते रहना है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उसके बाद किसका रिश्ता आता है? दुनिया में एक बच्चा आता है तो माँ और बाप के बाद सबसे पहले किससे रिश्ता जुड़ता है? भाई बहन। आज ये रिश्ता बड़ा कच्चा हो गया, बिलीव में, क्योंकि भाई बहनों के साथ हमारा कोई अपना जाती तो अमल दखल होता नहीं। शादी के बाद वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बच्चों के लिए हम दुआएं करते हैं क्योंकि बच्चे दिल को लगे हुए हैं, शौहर के लिए करते हैं क्योंकि हमारा भी उनसे ताल्लुक है। भाई बहन बहुत निगलेक्टेड है तो इंशाल्लाह हमने इनसे रिश्ते जोड़ने हैं। कैसे? नंबर एक, जब भी मिलें सलाम करें, वो दावत दें तो उसको कबूल कीजिए और उनकी गैर मौजूदगी में उनके हकूक़ की हिफाजत करें। बदगुमान ना हो, भाई बहनों के साथ ताल्लुक पे इंशाल्लाह हम बहुत बात करेंगे इस सफ़र में। फिर उसके बाद कराबत के रिश्ते, मामू खाला फूफी चचा जो भी अल्लाह ने खून के रिश्ते दिए हैं, इनके साथ कैसे ताल्लुक जुड़ेगा, हमारा रिश्ते कैसे जुड़ेंगे? इनको जाके मिलिए, ज़ियारत कीजिए। पहले लोग घर घर जाकर मिल के आते थे, आए हुए थे मिल जाएं रिश्तेदार, मामू को 5 मिनट मिले, खाला को, चचा को, फूफो को। आज वल्लाह ही हम बाहर से जब आते हैं ना तो कभी कहें ना उनको मिलना है, कहते पिछले साल आप ही के साथ गए थे, चले आपके साथ फिर चलते हैं। एक मुल्क एक शहर में रहते हुए लोग नहीं मिलते, तो ये गलत चीज़ है। फिर इस तरह उनकी खबरगिरी करिए रिश्तेदारों में, किसी को आपकी ज़रूरत हो सकती है आप उसकी ज़रूरत पूरी कीजिए, माली और बदनी मदद कीजिए। हुस्न सलूक का मामला रखना है और सबसे बड़ी बात तहादू तहागू, तोहफा दो तोहफा लो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अब इसके बाद कौन से रिश्ते हैं आप बोलिए? ससुराली रिश्ते, खट्टे और मीठे। मीठे कौन से हैं? नस्बी, तो नस्बी मीठे रिश्ते और कस्बी कह लीजिए ससुराली रिश्ते, सास ससुर नंदेवर जेठ जो भी हैं, इनको कैसे हम खुश करें? नंबर एक, इनकी मदद करें, खैर ख्वाही करें इनकी। यू शुड बी वेल विशर टू योर मदर इन लॉ, योर सिस्टर इन लॉ। फिर इनकी भी खबरगिरी करते हुए इनके साथ मामला अच्छा रखें, खुशी गम में शिरकत कीजिए, तहाइफ का तबादला करें। और इन रिश्तों में जो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है वो क्या है? बदगुमान ना हो, घर से ही ना जाएं, शादी के गानों में ही ना सिखा दें लड़की को कि बड़ी खौफनाक किस्म की सास तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और बड़ी ड्रॉनी सी नंदे होंगी तुम्हारी उस घर में। बदगुमान ना करें। फिर उसके बाद हमारे रिश्ते जो जुड़ते हैं ना वो दोस्तों और अहबाब से हैं, अहले मोहल्ला हमसाए, उनके साथ क्या ताल्लुक है? मुश्किल में साथ दें। हमसाए हमेशा मुश्किल में पहले आपके पास आएगा रिश्तेदार से पहले। फिर इस तरह वक्तन फवक्तन उनकी खबरगिरी कीजिए, ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे की मदद कीजिए, इनकी दीनी रहनुमाई कीजिए। कल आते हुए अपनी हमसाई को भी ले आइए, ये भी रिश्ते निभाने वाली बात होती है। फिर जब इज्तमाई सरगर्मियाँ होती हैं, सोशल इवेंट्स हैं, बड़े बड़े काम हैं, तो उसमें एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। किसी की शादी है तो आप उसके घर में मदद कीजिए, जो भी कुछ है। यानी क्या पता चला कि दीन अल मामला, मैंने इस साल ज़ाहिर है कि इस टॉपिक को स्टडी किया है, पहले भी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये भी आपको बता दूँ, क्योंकि जब तक हमारे इंसानों से ताल्लुक़ दुरुस्त नहीं होंगे ना, अल्लाह से भी नहीं सीधे होंगे। करना क्या है? इंशाल्लाह इस साल दौरे कुरान के दौरान हमने पूरी कोशिश करनी है कि लोगों की दुआएं लें, फॉरगिव फॉरगेट, माफ़ कीजिए, मिट्टी डालें और बहुत कुछ। अल्लाह का कलाम तो अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, आपके साथ यही चीज़ शेयर करनी है कि ये भी बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ने आज हमें मौका दिया। ये चंद बातें थी, आज घर जाकर अपनी दोस्तों गली महल्ले साथियों में से 5-5 ऐसी दोस्तें ढूंढने जिन्होंने कभी नहीं किया, और कल आप सब सामने आके बैठ जाएं, मैं आपके लिए बढ़ाऊंगी। पहली दफ़ा जो कुरान को समझता है उसको जो मज़ा आता है और जो उसमें तब्दीली आती है, वो तो बोलने वाले को बोलने पे माइल करती है। ठीक है, तो आज कोशिश कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर एक दफ़ा शुरू हो जाए और फिर आप फ़ायदा ना उठा सकें तो अफसोस होगा उसमें। आपके घरों में उर्दू तर्जमे वाले कुरान पाक हैं? जो भी है, जिसका लिखा हुआ कुरान आपके घरों में है साथ ले आएँ, آپ کو اچھا لگے گا. کچھ سسٹرز ہیں جن کو قرآن پاک لے کر آنا مشکل لگتا ہے یا پڑھنے میں مشکل ہے, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ کل یہ بڑے بڑے سکرین چل جائیں گے آپ کے لیے اور آپ اس میں سے بھی ترجمے کو دیکھ سکیں گی. لیکن نوٹس ضرور لیں, جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ نوٹس لیں, تاکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو پوائنٹس لینے آ جائیں گے اور بہت کچھ. تو بہت پیارا دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے, برکتوں والا ہے, بڑی خوبصورت گھڑیاں ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان دو دنوں میں ہی پورے ہو جائیں اور اللہ کے پاس پہنچ جائیں. تو دعا کیجئے کہ رمضان تک اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے زندہ رکھے. جو ساتھی جہاں سے بھی سن رہے ہیں, اپنے پیاروں کو اس دعوت میں شریک کریں, کیونکہ جس نے کسی کو بھلائی کا حکم دیا, بھلائی کی دعوت دی, اللہ اس کو اس کی نیکیوں میں بھی شامل کر دیتا ہے. تو جزاک اللہ خیر و احسن جزا. یقیناً آپ بہترین لوگ ہیں اس شہر کے کہ جو اس وقت قرآن پاک سننے کے لیے بیٹھے ہیں. پورے شوق سے, ذوق سے آئیے اور دعا کر کے آئیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہ بنے. ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے لیے آنا مشکل ہو, شیطان کہے گا آخری دو تین دن رہ گئے, گھر کی صفائیاں کر لو, رمضان شروع ہوگا پھر جاؤں گی. تو وہ جو چار پانچ پارے چلے جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا لینے دینے کا موقع آ گیا, وہ چلا گیا تو کیا کریں گے؟ تو چھٹی نہ کیجیے. عام وقتوں کی اور بات ہوتی ہے, لیکن جب قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ چلایا جاتا ہے تو پھر اس سے بیچ میں چھٹی نہیں کرنی. پوری کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانیوں کے معاملے فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله ہمیں عافیت دے دے, بیماریوں سے عافیت دے دے, پریشانیوں سے, نقصانات سے, حادثات سے اپنی پناہ میں رکھنا. یا اللہ کوئی ناگہانی کی تکلیف نہ آئے. یا اللہ اس پورے دور قرآن کے درمیان کوئی ہمارے خاندان میں کسی کی ڈیتھ نہ ہو. یا اللہ ہمیں کسی بھی مجبوری میں اٹھ کر جانا نہ پڑے. یا اللہ کوئی بیمار نہ ہو. یا اللہ ہم سب کو بھی نہ بیمار کرنا. یا اللہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو. یا اللہ کوئی پریشانی نہ آئے. یا اللہ ہمارے گھریلو معاملات بھی چلتے رہیں. یا اللہ مالی معاملات کو بھی درست رکھنا. اور یا اللہ اس سارے سفر میں اگر ہمیں کہیں کوئی رکاوٹ آ جائے تو ہم اس کو اپنی آزمائش سمجھ کر اس راستے پہ جمے رہیں. جزاک اللہ خیر و حسن جزا جنہوں نے بھی اس کو سنا سنوایا, اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر سننے والے سارے ایڈمن, سارے ساتھی اللہ کی رحمتوں اور اپنی اللہ کی برکتوں میں ہیں. بڑے اچھے خوبصورت ارادوں اور نیتوں کے ساتھ کل آئیے. آج کے سیشن سے کل کا سیشن زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. کیوں بھلا؟ کل آپ کے ہاتھوں میں قرآن پاک ہوں گے. لیکن یاد رکھیے, میں چند باتیں ابھی بول دوں. مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں, بھولی بھالی بہنیں ہوتی ہیں. تو وہ کیا, مثلاً ایک سوال یہ ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیا کرے؟ آ کے سنیے, جیسے آج سنیں ایسے ہی سنیے. تو گویا کہ جن کو قرآن نہیں آتا پڑھنا وہ بھی کل آئیں گے, فائدہ اٹھائیں گے. دوسرا, بیماری والے دن اگر کچھ بہنیں ایسی کیفیت میں ہیں کہ جس میں نماز قرآن نہیں پڑھتی, وہ کیا کریں؟ ان کو تو ضرور آنا ہے. کیوں؟ پہلے ایمان کا لیول کم ہوا ہوتا ہے تو یہ مسجد تو نہیں ہے, آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں. آپ سنیں گے, آپ نوٹس لے لیجئے گا, آپ قرآن پاک مت لائیے, سکرین سے دیکھ لیجئے گا, تو یہ بھی عذر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلی وہ بات کہ جن کو یعنی پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ بھی آئیں گے. دوسری بات, جن کو نہیں کسی وجہ سے پڑھنا تھا وہ بھی آئیں گے. تیسری بات, خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا وہ کیا کرے گا؟ چھٹی. دیکھیے بیمار ہو تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ اور قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور. اللہ نہ کرے کل اگر آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو بھی آ جائیے گا. ایک اور چیز دیکھیں نا, کہ بڑے چور دروازوں سے شیطان ہمارے پاس داخل ہو جاتا ہے, تو کوئی عذر جانے نہیں دینا ہم نے. ایک اور عذر آئے گا اور وہ ہے جاب سے تھکی ہوئی آئی ہوں. थोड़ा सा सस्ता लूँ, थोड़ी नींद ले लूँ, खाना खा लूँ, बच्चे वो ये। हाँ, रमज़ान में तो कोई दोपहर के खाने का इशू नहीं होगा, तो वो सिस्टर्स क्या करें भला, अपना लंच बॉक्स गाड़ी में रखें, साथ रास्ते में खा लें, छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने ये शुरू के 3-4 पारे छोड़ दिए तो आपको बाद में अफसोस होगा। ठीक है, जजाकल्ला खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।